नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी रेडियो पर इंडिया बोल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है और चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री के नाम पर जो अटकलों का दौर शुरू हुआ था वो अब खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करने के साथ ही खबर ये भी आई है कि उनके साथ राज्य में दो उप मुख्यमंत्री भी होंगे। इसके लिए केशव मौर्य, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम और साथ में दिनेश शर्मा का नाम भी तय किया गया है। वैसे इन दोनों का नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल था और साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा के नामों पर भी खूब कयास लगाए गए, लेकिन आखिरकार उग्र छवि के सन्यासी योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुखिया बनाया जा रहा है। लखनऊ में वेंकैया नायडू ने इस बात का ऐलान किया, सुनिए क्या कहा उन्होंने।
आज विधायक दल का बैठक में विधायक दल का नेता का चयन का एक ही मात्र विषय है। इस प्रक्रिया में लोगों को मैंने अनुरोध किया, कोई भी किसी का नाम प्रस्ताव कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद फिर वहां पार्टी का एक वरिष्ठ विधायक और सबसे सीनियर श्री सुरेश खन्ना जी ने श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नाम का प्रस्तावना रखा है। उसके बाद श्री दारा सिंह जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री एसपी बघेल जी, श्री वीरेंद्र सिरोही जी और मुकुट वर्मा जी और अन्य ऐसा 11 लोगों ने वो लोग ये प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उसके बाद मैं हमारा जो पार्टी का विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने। कारण क्या, ये मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने
तो योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव का समर्थन सभी विधायकों ने एक साथ किया और किसी और के नाम पर चर्चा हो ही नहीं पाई क्योंकि उसके पहले ही लोगों का समर्थन मिल गया। समीर आत्मज मिश्र लगातार लखनऊ से आपको इस बारे में खबरें पहुंचा रहे हैं। आप तक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। समीर, क्या हुआ आज पूरे दिन, कैसे आदित्यनाथ का नाम अचानक से इतनी तेजी से उभरा और फिर बाकी सारे नाम पीछे छूट गए?
जी निखिल, जैसा कि योगी आदित्यनाथ वैसे जो मुख्यमंत्रियों की दौड़ थी उसमें शामिल तो थे ही, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो घटनाक्रम बन रहा था, पहले राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, दिनेश शर्मा के नाम चले, तो ऐसा लगा कि जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम पूरी तरह से नेपथ्य में चला गया है।
आज पूरे दिन क्या हुआ समीर, आज पूरे दिन क्या हुआ?
आज पूरे दिन का घटनाक्रम जो रहा ये योगी आदित्यनाथ, मैं आपको शाम का घटनाक्रम बताऊं, जबकि अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम चर्चा में आया। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जहां वेंकैया नायडू, भूपेंद्र यादव रुके हुए थे, वहां योगी आदित्यनाथ का प्रवेश होता है। योगी आदित्यनाथ के बाद वहां फिर कई बड़े नेता आते हैं और जिस कमरे में सुनील बंसल भी थे, वो माथुर भी थे, जहां रुके हुए थे लोगों की काफी देर तक गहम बैठक चली है और उसमें वार्ताएं हुई हैं। उसके बाद ही ये बात तय मानी जाने लगी कि अब योगी आदित्यनाथ का नाम विधायक दल की बैठक में फाइनल हो सकता है। इस बैठक के खत्म होने के बाद लोक भवन, जो यहाँ का मुख्यमंत्री सचिवालय नया बना है, वहां विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद ये आखिर में फिर योगी आदित्यनाथ और का मुख्यमंत्री के लिए और दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए तय किया गया।
जी जी समीर,
घोषणा बाद में वेंकैया नायडू ने की जिसको भी आपने सुनवाया।
जी समीर, योगी आदित्यनाथ 5 बार से गोरखपुर के सांसद हैं। 1998 में वो पहली बार संसद के सदस्य बने, उससे पहले उनके गुरु रहे अवैधनाथ इस सीट से सांसद थे। आइए तृप्ति श्रीवास्तव से सुनते हैं कि अब तक कैसा रहा है आदित्यनाथ का सफर।
बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वो एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ से दीक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की ये धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर दो बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते गए। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि वो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं। महंत अवैद्यनाथ भी उत्तराखंड के ही थे। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैद्यनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर से महंत अवैद्यनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वो 3 लाख से भी अधिक वोट से जीते। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं द्वारा सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगाने की घटना के बाद हालात बिगड़ गए। प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद योगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी को 2 दिन बाद ही मुलायम सरकार ने सस्पेंड कर दिया। पहली बार पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी पर थोड़ी सख्ती की। साल 2007 में गिरफ्तारी ने उनकी और हिंदू युवा वाहिनी की उग्रता में थोड़ी कमी ला दी। योगी आदित्यनाथ नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति और उसके सेकुलर होने पर दुख जताते हैं और नेपाल की एकता के लिए राजशाही की वकालत करते हैं। मंदिर द्वारा चलाए जाने वाली 3 दर्जन से अधिक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थाओं के वो अध्यक्ष या सचिव हैं।
तृप्ति श्रीवास्तव बता रही थी अब तक योगी आदित्यनाथ के अब तक के सफर पर। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह जी, स्वागत है आपका। और आपसे चर्चा शुरू करें उसके पहले नितिन श्रीवास्तव है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, जो पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है उसका दौरा किया था इन्होंने चुनाव के दौर में। और नितिन, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप पूरे उस इलाके में रहे काफ़ी समय तक, और वो जो गोरखपुर और उसके आसपास का जो इलाका है, तो वहाँ कितनी पकड़ आपको दिखाई दी, कितनी पैठ दिखाई दी योगी आदित्यनाथ की उस इलाके के लोगों पर?
देखिए निखिल, दरअसल उस इलाके में जो योगी आदित्यनाथ की और गोरखधाम मंदिर, जो गोरखपुर में मंदिर है, उस मठ की जो पकड़ है, उसी के चलते आज ये हालात हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से मुख्यमंत्री पद उनको मिला है। और सबसे उससे ज्यादा अहम बात ये भी है कि उस इलाके में उनकी हिंदू युवा वाहिनी, हालांकि बाद में उन्होंने अपने को उससे काफी इतर कर लिया था, कोशिश की थी इतर करने की, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सबसे पहले एक तरह से धमकी सी दी थी भारतीय जनता पार्टी को, जो ऐसी पार्टी पिछले कुछ सालों में जिसको इस तरह की धमकियों की आदत नहीं दिखी है, उसको पहले धमकी दी थी कि योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि आदित्यनाथ उन बयानों से बचते रहे थे। शुरू के 2 से 3 जो फेज हुए थे चरण में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को उस तरह से अपना स्टार कैंपेनर बनाकर भी नहीं उतारा था, जैसा बाद में तीसरे चरण के चुनाव के बाद से, मैं खुद गोरखनाथ मंदिर में था और मैंने वहां देखा कि रोज उनके लिए एक एक हेलीकॉप्टर मौजूद रहता था, तैयार रहता था गोरखपुर में, जो उनको वहां पर एयरबेस है वहां से उनको लेकर जाता था और वो प्रचार करके वापस आते थे। तो और जाहिर है वो जो प्रचार कर रहे थे, जिस तरह का वो प्रचार कर रहे थे, वो बहुत ही सीधा और अगर हम उसको उसको साफ शब्दों में कहें तो काफी जहरीला किस्म का कटाक्ष भाषा वाला जो प्रचार, जिसके लिए वो जाने भी जाते रहे, उन्होंने खुले तौर पर वो प्रचार किया। भले ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी और तमाम लोग उसको बहुत पॉलिश्ड वे में करते रहे हो, लेकिन उन्होंने सीधे तरह से अपने अपने मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की थी।
जी नितिन, बहुत शुक्रिया इस पर पूरी जानकारी के लिए। अजय सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं और अब वो जो चर्चा हम ये कर रहे थे कि जो इस बार के उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के नतीजे हैं उनसे क्या जो जाति आधारित राजनीति है वो अब धुंधली पड़ गई है या उसका असर खत्म हो गया है, आपके पास इस पर विश्लेषण के लिए आएंगे। उससे पहले दो हमारे साथ कॉलर हमारे जुड़ रहे हैं, जरा उनसे सुन लेते हैं कि उनकी क्या राय है। जी बताइए, अपना नाम बताइए।
देखिए मेरा नाम मदन लाल है, मैं धुले महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
जी मदन लाल जी, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, कहिए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर।
जाति और ये संप्रदाय की राजनीति अब खत्म होने की चल पड़ी है।
जी
देखिए, यहाँ पर मायावती जी ने आक्षेप लिया था कि मुसलमानों के एरिया में कैसे वोट मिला। आप इस बात को समझिए कि बीजेपी के लोगों ने तीन तलाक का मुद्दा उठाया, इससे मुसलमान महिलाओं में बहुत अच्छा संदेश गया। और आज तो बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। दूसरे, मुलायम सिंह जी जो राजनीति करते हैं या लालू जी जो यहाँ राजनीति करते हैं, उनका तो फार्मूला ही है मुसलमान और यादव।
जी जी जी
पर, हाँ
जी,
ये सब अब खत्म हो गया है। अब लोग हिंदुस्तान एज ए होल, पूरा इंडिया, इस प्रकार से वो चुनाव हुए हैं और बहुमत से बीजेपी आगे आई है। जब बहुत ज्यादा जीत होती है तो ऐसा ही, 1971 की बात है, मैं स्वयं राजकीय कार्यकर्ता था और जब इंदिरा जी को प्रचंड बहुमत मिला तो हम भी कहते थे कि ये जीत बाई की है, गाय की है कि शाही की है। जब ऐसी अनपेक्षित युक्त होती है, इसलिए ये जो सब लोग उठा रहे हैं।
जी जी जी, बहुत जी, बहुत शुक्रिया। समय कम है, थोड़ा कम शब्दों में आपसे चाहेंगे कि आप लोग अपनी बात रखें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी सर, मेरा नाम आदिहरि पांडे है सर, बलरामपुर यूपी से बोल रहा हूं।
पांडे जी यूपी से बोल रहे हैं, बलरामपुर के। बताइए पांडे जी, क्या कहना है आपका।
जी सर, जो अभी उन्होंने बात की, जो इससे पहले वाले कॉलर थे,
जी
उनकी बात बिल्कुल सही है और इसमें मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
जी 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 पांडे जी, तो अजय सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि दोनों आपने बातें सुनी, चुनाव पर भी आपकी लगातार नजर रही है, आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो जाति की जो दीवार थी या जो लोगों ने टापू बना लिए थे वो टापू अब ध्वस्त हो गए हैं और लोग जो है अब खुल करके एक दूसरे को वोट दे रहे हैं?
ये थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अगर हम राजनीति को इस तरह से सिंप्लीफाई कर दें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। असलियत ये है कि जाति का जो अम्ब्रेला था, बीजेपी ने उसको ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया
जी।
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो छोटी छोटी जातियां हैं वो भी बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं और जिसकी वजह से बीजेपी को आप जो देख रहे हैं वो मिला है। अब इसको ये मान लेना कि जाति एकदम इर्रेलेवेंट हो गया है, मैं नहीं समझता कि ये सच है। और दूसरा एक चीज़ हमें और लगता है कि ये भी बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा कि मुस्लिम विमेन महिला उनका वोट अलग था आदमियों से।
अच्छा,
ये इस तरह होता नहीं है। अव्वल कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, एक दो इंस्टांसेस हो सकते हैं, ये उसी तरह हो सकता है जैसे हिंदू में अगर आप कहें कि औरतों ने अलग वोट दिया।
तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर महिलाओं ने वोट दिया होगा तो पुरुषों ने भी दिया होगा, या आप ये कह रहे हैं कि दोनों में से किसी ने नहीं दिया?
नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस तरह जेंडर के आधार पर ये सोचना कि किसी दल को एक जेंडर ने दिया होगा दूसरे ने नहीं दिया होगा, ये हमें समझ में नहीं आता। हमें नहीं लगता है कि ये हकीकत हो सकती है। कुछ एक थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन वो हर जगह होता है, वो कोई नई बात नहीं है।
एक बड़ी बात ये है कि जो मुस्लिम वोट कहा जाता है, मुस्लिम वोट बैंक अक्सर ये शब्द सुनाई देता है, और उस पर समाजवादी पार्टी भी अपना भरपूर दावा कर रही थी और बहुजन समाज पार्टी भी दावा कर रही थी। बीजेपी शुरू से ही इस पर कोई दावा अपना नहीं पेश कर रही थी। तो मेरे जहन में दो बातें आ रही हैं कि क्या मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज़ वास्तव में है या वो एक मिथक है और वो मिथक भी इस बार के चुनाव में टूट गया है, क्या आप इससे सहमत होंगे?
देखिए मिथक है, जैसे बाकी कास्ट के लोग हैं वो वोट करते हैं, वैसे ही माइनॉरिटी का वोट होता है, तो आप ये नहीं कह सकते
दोनों में कोई अलग ट्रेंड नहीं
देखते। नहीं, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं होता है कि वो एक साथ एक जगह गया, और वो इतना ज्यादा होशियार होता है कि जब उसको लगता है कि जो दल बीजेपी को हरा रहा है उसी को वो वोट देगा, तो हमें नहीं लगता है कि ये सच है। लेकिन एक बात जरूर है कि एक एक जो लोगों में ये था कि वोट बैंक को हम ये लेके और जीत जाएंगे इलेक्शन, वो तो इन इलेक्शंस में लगातार हट रहा है। लोग ये जान रहे हैं कि इस तरह का जो आप ऐसा जो सोचते थे वो सही नहीं है।
तो इस तरह के सवाल मतलब दलित वोट बैंक के लिए भी है, इस तरह का सवाल पिछड़ा वोट बैंक के लिए भी है, इन सब सवालों पर आप क्या कहेंगे?
ये आप वही हम कह रहे हैं ना कि जब बीजेपी ने वो अम्ब्रेला एक्सपेंड किया तो उसमें बहुत सारे कास्ट आते गए, तो ये कोई स्टैटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये एक जगह रुक जाएगा और फिर उन्हीं के साथ रहेगा। बीएसपी के पास जैसे बहुत सारे वोट थे, तो लेकिन उसमें बहुत सारे थे जो कि इनकी तरफ आ गए, अम्ब्रेला इनका जब एक्सपेंड हुआ तो इसकी तरफ आ गए, तो इसलिए ये कोई ये कहना कि कोई एक जगह वो अटक गए हैं और वहीं पर रहेंगे, ये सही नहीं है। वो अक्सर अलग अलग जाते रहते हैं, टूटते रहते हैं, इस बार वो थोड़ा सा ज़्यादा हिंदुत्व की तरफ टूटे हैं।
जी, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनकी बात सुनते हैं। जी, अपना नाम बताइए।
हेलो
जी, अपना नाम बताइए।
मैं शमशेर सिंह बिस्ट अल्मोड़ा से बोल
रहा हूं। शमशेर सिंह बिस्ट अल्मोड़ा से जी बताइए, आपके यहाँ भी बीजेपी को बहुत प्रचंड बहुमत मिला है, तो आप क्या मानते हैं कि क्या वजह है जो जाति आधारित राजनीति है उस पर पार पा लिया है बीजेपी ने?
नहीं भाई, बिल्कुल ये सच है कि उत्तराखंड तो ये हायर कास्ट वगैरह का बहुमत तो है ही यहाँ, और मैं ये इस बात को कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 86% हायर कास्ट, 83% बैकवर्ड क्लास, 82% आपका दलित, ये सब बीजेपी को चला गया। और ये हिंदुत्व की जो लहर आई दो राज्यों में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा जाति वाला मामला है ये ढककर हिंदुत्व वाला चला गया। आप देखिए पंजाब में ऐसा नहीं हुआ, आप देखिए मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ, आप देखिए गोवा में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन दो राज्यों में सबसे अधिक इसका प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। तो हमको ये लगता है कि जो हिंदुत्व का करंट जो अंदर ही चल रहा था उसकी वजह से भाजपा को लाभ मिला है, लेकिन देर सवेर फिर वो स्थिति पलटने वाली है, क्योंकि इस बार जो मुद्दे हैं वो सब गायब हुए हैं। मैं कह रहा हूँ गैस का मुद्दा गायब है, महंगाई का मुद्दा गायब है, उत्तराखंड में गैरसैंण का राजधानी का मुद्दा गायब है, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हिंदुत्व का जो करंट चला, सब लोग इसको भूलकर इसकी तरफ चले गए।
जी शमशेर जी, जी शमशेर जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए।
सर बोलिए।
जी बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
जी, मैं बिहार से शिवहर जिला से बोल रहा हूँ।
शिवहर से बोल रहे हैं महंत जी बोल रहे हैं?
जी 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 सर, जी सर।
हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप?
हम कहना चाहते हैं, अभी जो शमशेर जी का जो बयान आया,
जी
इनका बयान सत्य है, पर एक बात इनकी हमको गलत लग रहा है।
जी,
कि बोल रहे हैं कि आने वाले दिन में यह मुद्दा उम्मीद हो सकता है, ऐसी बात नहीं है।
आप मानते हैं कि जो ट्रेंड अभी बना है वो कायम रहेगा लंबे समय तक?
बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मोदी जी ऐसे प्रशासक हैं, ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, ऐसी उनकी सोच है, जिस सोच के आधार पर उनको वोट मिला है, और मुख्यमंत्री का भी चुनाव वो ऐसे व्यक्ति का किया, मोदी जी के द्वारा किया गया है
जी,
जो शायद इस जो शमशेर जी का जो बयान आया इस बयान को यथावत रखने में।
जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया, आपकी बातें हम तक आ चुकी हैं। अजय सिंह जी, ये जो कह रहे हैं कि जो अब हिंदुत्व की जो धारा थी या हिंदुत्व की जो लहर थी या वो जो भावना थी उसके आधार पर इतनी बड़ी जीत मिली और अब वो जीत आगे भी रहेगी, कायम रहेगी, योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र कर रहे थे कि ये भी बीजेपी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि ये हिंदुत्व की जीत थी, आप क्या कहते हैं?
नहीं, एक हद तक तो ये बात सही है, क्योंकि जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो छोटी आइडेंटिटीज़ हैं, वो जब हिंदुत्व टाइप की आइडेंटिटी आती है तो उसमें वो एसिमिलेट हो जाती हैं। तो वही हुआ है इस बार भी, और जैसा हमने कहा कि इन्होंने जो डिफरेंट कास्ट हैं उनको भी अपने साथ जोड़ा है, तो हिंदुत्व आइडेंटिटी तो उसका एक जो इम्फेसिस जिसे कहें वो था, और वो ये जो आप देख रहे हैं सीएम के जो सीएम जो अभी नाम आया है योगी आदित्यनाथ, तो उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है।
एक बात ये भी कही जा रही थी कि जो बीजेपी ने जो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था उसमें जो नॉन यादव वोट्स थे, मतलब यादवों को छोड़कर के जो बाकी जातियां थी पिछड़े वर्ग की, उन पर फोकस किया। उसी तरह से दलितों में उन्होंने जो नॉन जाटव जो उस पर फोकस किया, और उसका उनको बड़ा फायदा मिला, क्योंकि जो मायावती के दौर में जो फायदा ज़्यादा मिला वो जाटवों को मिला, उसी तरह से समाजवादी पार्टी का जो शासन रहा उसमें ज़्यादा फायदा यादव लोगों को मिला, तो उससे जो नकारात्मक भावना उत्पन्न हुई थी दूसरी जाति के लोगों में उसका भी फायदा बीजेपी ने उठाया, आप क्या कहते हैं?
तो ये भी तो एक तरह से आपने जात पे ही आधारित राजनीति की ना, जात से बाहर तो आप नहीं गए, तो जाति पे जब आपने आधारित राजनीति की, और ये बात सच है कि जो एमबीसीज थे, जो ओबीसीज के सेक्शंस थे, वो धीमे धीमे आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, लेकिन आपने उनको एश्योरेंस दिया, आपने उनसे कहा कि हम आपको स्पेस देंगे, और अमित शाह ने वो बहुत अच्छे ढंग से किया। हमें जो वहाँ पे हम गए थे यूपी में, और जो जानकारी मिली है
जी जी।
उसमें बहुत जगह वो गए, लोगों से बात किया, उनको एश्योरेंस दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, आपको स्पेस हम देंगे, और वो स्पेस का एश्योरेंस एक ऐसा एश्योरेंस था जो कि बाकी लोग नहीं दे रहे थे। तो ये है कि उसमें वही हमने जो कहा कि अम्ब्रेला इन्होंने ज़्यादा बड़ा कर दिया था, और जिसमें कि बाकी कास्ट आ गई
जी। हमारे साथ दो और श्रोता जुड़ रहे हैं जी, अपना नाम बताइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी सर।
जी अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
जी मेरा नाम कुमार है सर, मैं मऊ जनपद से बोल रहा हूँ।
मऊ जनपद से, एक बार फिर से अपना नाम बताइए, मऊ से आप बोल रहे हैं, नाम क्या बताया आपने?
प्रशांत कुमार राज।
प्रशांत जी, प्रशांत मऊ से बोल रहे हैं, बताइए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
मेरा कहना है सर कि जो 17 जातियां थी या 9 ओबीसी की, वो इधर उधर थी, और उनको बीजेपी ने मिला करके अपना वोट बैंक बनाया और उससे जीत हुई है।
जी जी प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया। और एक हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे।
साबिर खान बोल रहा हूँ, ग्राम रोजरू विदिशा मध्य प्रदेश से।
साबिर खान जी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, बताइए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
मेरा मानना ऐसा है साहब, हिंदुस्तान में जाति सबसे बड़ा फैक्टर चुनाव के अंदर
जी,
और अपन साहब यहाँ पे जो 5-8 जून चुनाव हुआ वहाँ कोई ना जीता ना कोई हारा, सरकारें हारी वहाँ पे, जो सरकारें थी ना जो रूल कर रही थी
जी जी,
जनता की जो भावना को पूरी नहीं कर पा रही थी
जी,
उनके अगेंस्ट वोट गया है। और दूसरी तरफ अपन जाति की बात करें तो मायावती ने 99 मुस्लिमों को वोट दिया लेकिन वो ज्यादातर हार गए, और बीजेपी ने एक भी आदमी को वोट नहीं दिया, एक भी मतलब मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा, इसके बाद उनकी 325 जीत गए। तो मतलब ये है कि हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को हुकूमत है, हिंदू भाइयों ने एक तरफ वोट किया, बाकी लोगों ने दूसरी तरफ मिलजुल के वोट किया, इस वजह से प्रचंड बहुमत आया। लेकिन बहुमत की जहाँ तक बात है तो यहाँ सरकारें हारी हैं सर, पंजाब में देखिए आप, किसी का जादू नहीं चला
जी जी,
मणिपुर में सरकार हार
गई। आपका क्या साबिर अली जी, आप ये कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी पार्टियां थी उनकी हार हुई, उनके कामकाज से लोग खुश नहीं थे, किसी और को मौका देना चाहते थे। जातियों वाली बात भी है कि सब लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका असर बहुत पुरजोर कायम है, और उस पर धर्म की भी भावना काम कर रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आखिरी सवाल, समय बहुत कम बचा है, कि क्या ये जो धारणा या ये जो लहर या ये जो असर हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ इस बार के चुनाव के लिए है या आने वाले समय में भी इसकी छाप हमें दूसरे चुनाव पर दिखाई देगी?
देखिए ये लहर जो है ना, ये अभी इनकी जो इन्होंने एनालाइज किया वो बड़ा अच्छा किया, एंटी इनकम्बेंसी का था, और जहाँ जहाँ रीजनल लीडर्स अच्छे थे वहाँ पे ये आप देखिए रुक गया है
जी,
दिल्ली में रुका, बिहार में रुका
जी।
तो कई जगह ऐसा नहीं होता है कि ये इस तरह की स्थिति है कि जहाँ पे एक बार आप जीते हैं तो हर जगह जीतते चले जाएंगे
जी जी।
अभी तो दो स्टेट्स में ये आप दिखाई दे रहा है कि इम्पैक्ट है, और ऑफ कोर्स मतलब इम्पैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन रीजनल अगर लीडर्स स्ट्रांग आते हैं तो वो रोक देते हैं,
तो उस वक्त इस तरह की धारा जो चली आ रही है पूरे पैन इंडिया कह सकते हैं या जो बाकी दूसरे राज्यों में दिख रही है, वो उसको रोकने की क्षमता स्थानीय या क्षेत्रीय नेताओं में,
क्षेत्रीय नेता जहां जहां स्ट्रांग हैं, जहां उन्होंने अच्छा काम किया है, जहां उनके अगेंस्ट लोगों में एक वो नहीं है
जी,
तो वहां पे वो रोक देते हैं और वो अच्छी तरह रोक देते हैं।
बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए, समय अब नहीं रहा है और हमारे स्टूडियो मैनेजर राजेश चौहान इशारा कर रहे हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नमस्कार।
बीबीसी इंडिया बोल।